अंग नमो भगवते वासुदेवाय, अंग नमो भगवते वासुदेवाय, अंग नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृतम् नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमो वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्यं ईश्वरम्। अवज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले संरूपं कदा मध्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पश्चात्देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। पञ्चतत्मातकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहदितौ गौड़दय पुष्पवंतौ चित्रसंदौ तमनुदौ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम हरेनामेव केवलम्। कुलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। प्रातःकालीन भगवत कक्ष में बाबा बलराम हॉल में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं नमन करता हूँ। आज बहुत ही पवित्र दिवस है व पावन दिवस है, जो कि बारह द्वादशी एवं बारह भगवान का आविर्भाव व प्रकट दिवस है। तो श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का माध्यम से एवं तृतीय स्कंद में देवहूति कपिल संवाद में और मैत्रेय विदुर का संवाद चलता है। उसमें आगे जाके वर्णन होगा कि भगवान का अवतार समुद्र का लहर जैसे आता है, कोई गिन नहीं सकता है। फिर भी देवहूति जी ने माता है, लेकिन कपिल देव अभी गुरु का भूमिका निभाए और उनको इस ऋषि तत्व का वर्णन किए हैं। तो उसी प्रसंग में तृतीय स्कंद में आठ अध्याय में ब्रह्मदेव का आविर्भाव प्रकट का बारे में वर्णना हुआ है। उसमें वर्णन इससे होता है कि जैसे ब्रह्मांड कई बार प्रलय भी हुआ और कई बार ब्रह्मा ने सृष्टि का सर्जना किए हैं, लेकिन अभी ब्रह्मा जी ने अपना मंत्र माध्यम में ये संसार को भरने के लिए प्रजा का और भरपूर उन्होंने चेष्टा किया, लेकिन उसमें भर नहीं पाए। इसलिए मैथुन माध्यम से वा स्त्री पुरुष का मिलन माध्यम से कैसे संसार को आरवम सृष्टि का रचना और जोरदार से विस्तार किया जाए, तो उसी समय उन्होंने मनु और सतरूपा को उन्होंने और सृष्टि किए थे। लेकिन जब मनु सतरूपा ने बतलाया कि हमको तो सृष्टि किए किस कार्य के लिए, तब ब्रह्मा जी ने उनको बतलाया कि सृष्टि कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन उसी समय ये ब्रह्मांड अब आर जलमग्न था, जलमग्न था और देवती और ना सतरूपा और मनु जो प्रार्थना किया हमको किस कार्य के लिए, तो उन्होंने बोले कि सृष्टि कार्य बढ़ाने के लिए। लेकिन सतरूपा मनु ने देखे कि जलमग्न है, कहाँ उसका थैथान होगा। तो ब्रह्मा जी ने भी सोच में पड़ गए क्या किया जाए, तो वे उस समय चिंता करते हुए बिताए थे। उसी समय अपना नथुनी से बड़ा भगवान का प्रकट हुआ, तो जो प्रकट हुआ अंगूठ का परिमाण माप से उन्होंने प्रकट हुए थे, लेकिन थोड़ा देर में ही उन्होंने विशाल काय रूप धारण कर लिए, जैसे छोटे हाथी होता है वह हाथी भी होता है, इतना प्रमाण से उन्होंने बढ़ गए और बढ़ते हुए आकाश मार्ग में फिरे और उछल के चल दिए। लेकिन इतना परिमाण में जब बढ़ने लगे तो ब्रह्मा जी ने और सोचे कि ये तो कोई साधारण स्वर नहीं बा शुकर नहीं है, उन्हें जान लिया कि भगवान ही प्रकट हुए। तो और दूसरा जो मुनि ऋषि लोग थे उन्होंने भी दर्शन किए, वो भगवान की स्तुति भी किए, लेकिन भगवान उसी अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि आप आगे जाके श्रवण करिमा पढ़ेंगे कि तृतीय स्कंद में 17-18-19 अध्याय में से विशद वर्णन है। तो इधर क्या हुआ कि जैसे आप सुने हैं कि हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप प्रकट हुए चुके थे, तो उसी समय हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप इतना बलवान थे कि ये धरा को सरा मानते थे, कुछ भी नहीं मानते थे, क्योंकि ब्रह्मा का पास से उन्होंने अमर बर मिला था हिरण्यकश्यप को, और दोनों भाई इतना बलवान थे कि इंसान को तो कुछ भी मच्छर का जैसे मानते थे, क्योंकि उनका मन का कोई भय नहीं था, डर नहीं था। और हिरण्यकश्यप को हिरण्यकश्यप खोज करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, ऐसे कि ये ब्रह्मांड में गदा लेके हिरण्यकश्यप घूमने लगा, चार तरफ घूमने लगा, क्योंकि जब वो कोई बलवान का ताकत पहलवान का अहंकार बढ़ जाता है वह शरीर खोजेले होना लगता है, तो कोई दूसरा पहलवान चाहिए उनको लड़ने के लिए। तो आज हिरण्यकश्यप गदा लेके पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा, घूमते हुए उन्होंने फिर स्वर्ग तक गए, तो स्वर्ग में देखे कि देवता लोग आज बहुत बड़ा पहलवान आ गया, सभी बिना लड़ाई से उन्होंने सब छोड़ के चल दिया उनसे। लेकिन उसमें भी उनका मन भरा नहीं, उन्होंने फिर सीधे सीधे वरुण देवता के पास चल दिया, तो वहाँ जाके फिर वरुण देव को बहुत बढ़िया भाव से संबोधन किया, तुम बहुत बड़ा यज्ञ करके और भगवान को भी संतुष्ट कर चुके हो, लेकिन हमको तो एक पहलवान का साथ लड़ना चाहिए, लेकिन तुम भी लड़ सकते हो, तुम भी कम नहीं हो। लेकिन वरुण देव ने देखे कि इसे लड़के तो फायदा नहीं है और मैं भी इससे जीत भी नहीं सकता हूँ, इसलिए उन्होंने सोचे कि इसे बात को मैं टाल देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया ना वो बात को टाल दिए, एवं ओ हिरण्यकश्यप इसे भागवत वर्णन आता है, पुराण वर्णन आता है कि नारद मुनि से भी वो सुने थे कि भगवान कहाँ है, क्योंकि सब तरह वो उन्होंने ढूंढ लिए थे। तो वहां से सीधे सीधे उन्होंने घूमते हुए, क्योंकि खबर मिल गया कि अभी और पृथ्वी को बा रसातल से उनको लाने के लिए और भगवान अभी अभी भगवान विष्णु ने और स्वरूप व शुक्र रूप धारण करके और उनसे लेके आ रहा है। तो उनको बहुत बढ़िया पहलवान आज मिल गया, तो उन्होंने फिर उनका पास पहुंच गए। उधर तो भागवत वर्णन आता है कि भगवान अपना दांतों में और दांत का अग्र भाग में और पृथ्वी देव को धारण किए हुए और बहुत तेजान बा बड़बान जैसे उन्होंने वहां से निकल के आ रहे थे। तो बीच में उनको फिर और भेंट हो गया किन से, ना हिरण्यक से। तो हिरण्यक जो का साथ जब भेंट हो गया, उन्हें देखे कि अजीब जीव है, क्योंकि भगवान बोले थे लेकिन अभी देखे थे ये कोई पशु है, लेकिन पृथ्वी के धारण किए हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो ये धरोहर तो हमारे लिए संपा किया है, अब तुम कैसे लेके जा रहे हैं। तो भगवान उसका बात का कोई परवाह ही नहीं कर रहे थे, लेकिन पीछे भगवान का वो पड़ गया कौन ना हिरण्यक। तो अरे पीछे पड़ते हुए फिर गाली देना भी आरंभ किया, उल्टा सीधा बकने लगा। इतना तक कि भगवान को बोला कि अरे ये पशु लोग क्या लड़ाई करेंगे हमारे साथ। तो भगवान फिर उसका बात को टालते हुए फिर चल दिए, लेकिन भगवान को और भी उल्टा सीधा बुरा शब्द से उन्होंने जब आरो गाली दिया, तो भगवान फिर अपना अचिंत शक्ति से पृथ्वी देवी को अभी जैसे जलमग्न है तो धरोहर को कहाँ रखा जाए। इतना तक कि भगवान उनको बोल दिए कि अरे हम तो तुम्हारे जैसे कुत्ते को ढूंढ मारने के लिए ढूंढ रहा है। तो ये बात तो हिरण्यक को अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा बहुत। तो उन्होंने बहुत गुस्सा हो गया, तब भगवान का साथ फिर आ रहा लड़ाई करने के लिए तैयारी है कौन ना हिरण्यक। जब हिरण्यक तैयारी हो गया, उनका पास गदा था, तो गदा से भगवान को प्रहार करने के जो उद्यत हुआ, भगवान भी अपना गदा को स्मरण करते हुए उन्होंने भी अपना गदा ले लिए। तो अब बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने चाल करके जैसे गदा युद्ध होता है, अब महाभारत युद्ध में आप भीम दुशासन का युद्ध देखे होंगे, तो उसका कई नीति नियम भी होता है। तो भगवान और हिरण्यक में भी ऐसे ही और पैंतरा काटते हुए उन्होंने फिर लड़ाई चालू किया। तो लड़ते हुए कुछ देर का बाद तो भगवान ने ऐसे एक और चाल में मार दिए कि किसका ना हिरण्यक का गदा गिर गया। तो गदा गिर गया था, उठाने के लिए समा रहे थे, तो भगवान ने बोले देखो तुम गदा उठा लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि युद्ध का नियम है कि कोई एक बार अस्त्र गिर जाए तो उसको दोबारा उठाने का कोई शास्त्र में नियम नहीं है। उसको बहुत अच्छा ढंग से वो जानता था, इसलिए गदा नहीं उठाया, लेकिन भगवान बोले नहीं उठा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर गदा उठाया भगवान का साथ, फिर घसामान धूमधाम से फिर लड़ाई चालू हुआ बहुत देर तक। तो ऐसे उन्होंने लड़ाई किया कि भगवान का गद्दा में इसे एक आर मारा कि भगवान का गदा भी गिर गया, क्योंकि उसी समय और भगवान का जब लड़ाई देखने के लिए जैसे यहाँ पर भगवान ने रास रचाया, तो समस्त देवताओं उनका पत्नी को लेके विमान में ऊपर में अब खड़े होकर देख रहे थे। तो आज ये दो पहलवान और लड़ रहा है, इसलिए देवता लोग मुनि ऋषि लोग भी ऊपर से आदर्शन कर रहा है। तो जब गदा भगवान का हाथ से गिर गया तो उनका तो फिर सांस ही बंद हो गया, क्योंकि उनको जानते थे कि ये दो भाई अभी आगे जाके कि क्या करने वाले हैं, आज भगवान इसे ना मारे तो क्या हालत होगा। इसीलिए भगवान उनको आश्वासन देते हुए बोले कोई चिंता की बात नहीं, उसको मैं काम तमाम ही करूंगा। तो उसमें फिर क्या हुआ ना, बहुत देर तक जब लड़ाई चालू रहा और देवता लोग आनंद से उसका आनंद ले रहे थे दर्शन करते हुए, तो ब्रह्मा जी ने बोले कि देखो ये तो असुर है, राक्षस है, ये आगे जाके उल्टा सीधा माया रूप धारण कर सकता है, कोई दूसरा चाल चाल खेल सकता है, और ये शास्त्र में वर्णन है कि शाम को तमगुण का प्रभाव जब बढ़ जाता है तो राक्षस लोग का और शक्ति भी बढ़ जाता है। तो ब्रह्मा जी ने उनको बोले कि देखो अभी दोपहर होकर ढल चुका है, शाम को होने वाला है, तो फिर उनको आप जल्दी उसका पहले मार दो, क्योंकि अभी एक मुहूर्त तो आ चुका है कि अभिजीत मुहूर्त है, तो अभिजीत मुहूर्त में उसको सफाई कर दो काम। तो भगवान ने उनका बात सुन के बहुत ठोठो होकर हंसने लगे। तो और भगवान क्या किए ना, लड़ते ही तो रहे और हिरण्यक्ष भी अपना चाल खेलता रहा, ऐसे कि उनका गदा और दोबारा फैल कर दिए भगवान ने। ऐसे मारे बाएं खुरा से उन्होंने हाथ में पकड़े होते भगवान गदा, उससे दे मारेगी आ रहो हिरण्यक्ष का और गदा भी गिर गया। तो उन्होंने क्या किया ना, एक त्रिशूल लेके भगवान का ऊपर चला दिया। तो भगवान का ऊपर जब त्रिशूल चला दिया, भगवान फिर सुदर्शन चक्र का माध्यम से उसको विफल कर दिए। तो अभी हिरण्यक्ष क्या किए ना, अभी अपना और गदा भी फेल हो गया और अभी देखे कि त्रिशूल भी व्यर्थ हो गया। तो उन्होंने फिर माया शक्ति का प्रभाव का डाल दिया। उन्होंने जो माया शक्ति का प्रभाव उन्होंने डाले, तो उस शास्त्र में भागवत में वर्णन है कि और बहुत सेना सैन्य सामंत तो और निकलने लगे, ऐसे कि ऊपर से पीव मल मूत्र तक अब बहने लगा। ये बहुत अपशकुन का शब्द था, जैसे उनका जन्म हुआ था उसी समय भी ऐसे ही आ रहा अशुभ सूचना मिले थे, तो अभी भी ऐसे ही अब सूचना दे रहा था। तो भगवान ने अपना अत्यंत शक्ति से ये सब उनका जो माया शक्ति को नष्ट कर दिए। और अपना आर खोर नहीं, भगवान अपना हाथ से उनको एक तमाचा मारे कि वहां कानपट्टी में। तो अब जब कानपट्टी में मार दिए भगवान ने, उनका फिर सर चकराने लगा, आंख बड़ा बड़ा हो गया एवं ये शरीर आ रहा अपना जो सुरम में वो आ गया। और उन्होंने फिर प्राण पकड़े को उन्हें त्याग दिया। तो देवता लोग फिर भगवान का ऊपर पुष्प वृष्टि किए एवं भगवान का बहुत सारे स्तुति स्तव किए एवं मुनि ऋषि लोग एवं भगवान ये हिरण्यका को वध करके फिर अपना धाम को चल दिए। तो उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती श्रीधर स्वामी ने ये बताते हैं कि और ये चाक्षुष मनुंतर में ये महाप्रलय का जो समय हुआ था, और उसी समय ये हिरण्यक्ष को भगवान वध किए थे। और भी इसमें दो लीला वर्णन करते हैं कि स्वयंभूम मनु का भी और जो मनुंतर में भी इसका प्रकट दिवस का भी बराहदेव का बताते हैं। तो बराहदेव का प्रकट बारे में मैं आप लोग को वो संक्षेप में सुनाया। तो और भी बराह पुराण में और बहुत कुछ लीला है। तो बराह पुराण में बराह भगवान से धरित्री माता बा वसुधा और उनका वर्णन भी करते हैं। जैसे आप सुने हैं वृंदावन में आप जो परिक्रमा करते हैं, तो एक बराह घाट नाम से एक जगह आता है यहाँ थोड़ा दूर में। तो भगवान यहाँ भी कोई उसी समय एक विश्राम किए थे, क्योंकि रसातल से जब पृथ्वी माता को लेके आए तो पृथ्वी माता का भी अभिमान हो गया था, क्योंकि मेरे लिए भगवान को आ रहा शुक्र रूप व बराह रूप धारण करना पड़ा। तो उनका अभिमान को बा उनका शंका का समाधान करने के लिए भगवान जब हिरण्यक्ष को वध करने के बाद भी इन्हें विश्राम किए थे। और भी एक जगह विश्राम घाट है, जो इसी किशन बलराम वृंदावन से ना नंदगाम से अक्रूर जी लेके आए थे कंस को मारने का, पहले वहाँ उन्होंने भी विश्राम किए थे, उसी से भी विश्राम घाट है। लेकिन यहाँ जो बराह घाट है तो पृथ्वी माता को यहाँ भगवान लेके विश्राम किए थे। तो जब रसातल में धरित्री माता चले गए थे वा धरती पृथ्वी देवी चल दिए थे वा वहां थे, तो ये संसार का जलमग्न था। लेकिन पृथ्वी माता यहाँ आके देखे देखे कि बराह घाट में अभी जैसे परिवेश है, ग्वाले घूम रहा है, गाय चरा रहा है, चिड़िया चह रहा है, अभी जैसे कार्यक्रम वृंदावन विभिन्न प्रकार लीला चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, ध्यान चल रहा है, परिक्रमा वगैरह चल रहा है, जमुना में नहा रहा है भक्त लोग। तो यही दृश्य देख के उन्होंने फिर बोले कि क्या बात है, मैं जो रसातल में चल दिया था तब तो सृष्टि कैसे चला यहाँ पर। तो भगवान बोले देखो ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है, लेकिन ये जो वृंदावन धाम है ये मेरे घर है, ये प्रलय कभी नहीं होती है। और वृंदावन भी कोई देश का गांव का राज्य का अंतर्गत नहीं होता है, जो हो कि आप दस नाम अपराध में है कि जो हो इसमें वृंदावन और नवद्वीप में जो भेदभाव करता है, परंतु कोई देश का अंतर्गत होता है माना जा, कोई मानता है तो उसको धाम अपराध होती है। जो भी हो तो फिर बड़ा पुराण में ऐसे वर्णन आता है कि कल्प का भेद से अलग अलग लीला है, तो वहां पर कहा जाता है कि बड़ा भगवान ने इतना विशाल का रूप विस्तार धारण किए थे कि 6 योजन ऊंचाई था उनका, 1 योजन 8 किलोमीटर होता है, तो आप मान लीजिए 8 माइल होता है, तो 8 माइल 8×3=24 किलोमीटर लगभग ऊंचाई, और 9 किलोमीटर चौड़ाई था, 6 किलोमीटर पर लंबाई था उनका, तो कितना विशाल बड़ा भगवान का शरीर था। उन्होंने पृथ्वी देवी को आड़ धारण करके बहुत लंबे समय तक, इसमें बताते हैं कि 21 कल्प तक उन्होंने धारण करके पृथ्वी माता को रखे थे, ये बड़ा पुराण वर्णन है। जो कि कर्दम मुनि ने और तपस्या करने का बाद आर ये पृथ्वी देवी का आर आर स्थापन का जो वर्णन आता है, एक भक्त ने मेरे को पूछे थे कि उस समय लड़ाई कहाँ हो रहा था, लेकिन भागवत में वर्णन है कि पृथ्वी देवी के जो लेके आए भगवान बीच में पानी का ऊपर लड़ाई हो रहा था, समुद्र का ऊपर लड़ाई हो रहा था। भागवत आप पढ़े हो सुने होंगे कि उसमें और हिरण्यक्ष का जो आर हिरण्यक्ष शरीर इतना लंबा था कि समुद्र उनका हाँटू तक होता था। तो भगवान बड़ा भगवान तो भगवान ही है, क्योंकि हमारे जयदेव गोस्वामी उसमें अपना दश अवतार सूत्र में बताते हैं कि बसती दसन शिखरे धरणी तब लग्ना सचिनी कलंक कलेवनी भगना केशव धृत सुकर रूप जय जगदीश। गीत गोविंद में बालाबुधिनी टीका का एक और पद वहां दिया जाता है कि कहा जाता है कि भगवान कैसे लाग रहे थे उस समय ना, बसती दसन शिखरे ये पृथ्वी माता अपना दांतों में व दाढ़ों के ऊपर बैठे हुए थे, जैसे चंद्रमा में तो कलंक है, लेकिन इसमें पृथ्वी माता का जो निष्कलंक रूप को उन्हें धारण किए हुए थे बड़ा देव भगवान। तो जयदेव गोस्वामी बताते हैं कि उसी जगदीश को मैं प्रणाम करता हूँ, वास्तव करता हूँ। तो इसे ही बड़ा भगवान का और भी बड़ा पुराण में वर्णन आता है कि बहुत सारे जैसे तीर्थ है और पवित्र क्षेत्र है, आप सुनेंगे जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने ये भागवतम का सुनाए थे, उसका नाम भी सुकरतल, जो कि मुजफ्फरनगर से आगे है, आप लोग कोई दर्शन किए होंगे। तो वो सुकर क्षेत्र महात्मा का बारे में बताते हैं कि कोई भक्त लोग वहां से होके और वृंदावन आ जाते हैं और वहां भी परिक्रमा का अब श्रवण करने का जो विधि विधान है अभी भी पालन करते हैं। तो कोई लीला ऐसे आता है कि कोई तीर्थ में जाने से कोई पाप छूट जाती है, तो ये ब्राह्मण का और ब्रह्महत्या पाप लगा हुआ था, तो उन्होंने फिर कोई तीर्थ में उन्होंने और यात्रा किए, स्नान किए व आवाहन किए, ठीक नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो वैकुंठ तीर्थ में स्नान किए उनका जब पाप छूट गया, तो उन्होंने ब्राह्मण लोग फिर और बताया कि कौन से तीर्थ है। तो उसी प्रसंग में भगवान बराहदेव पृथ्वी माता को बताते हैं कि यहाँ पर जब मंदहत्ता राजा मथुरा में राजा हुए थे उसी समय उन्होंने भी बराह भगवान का पूजन किए थे। तो और भी एक हमारे ऋषि थे, उनको नाम कपिल था, उन्हें कपिल भगवान का और उन्होंने बड़ा निर्माण किए थे, विग्रह निर्माण किए थे, और बहुत दिन बाद पूजा करने के बाद व आराधना करने के बाद उन्होंने इंद्र को दे दिए थे, जो बराह का नाम था कपिल बराह। तो कपिल बराह इंद्रदेव का आर महल में पूजित हुए रहते, लेकिन ऐसे एक समय आया जैसे हिरण्यकश्यप आए थे, वो तो दूसरा कोई नहीं थे, भगवान का द्वारपाल थे जय विजय। चतुर कुमार अभिशाप से उनको फिर तीन जन्म राक्षस शरीर में आर धारण करना पड़ा। तो वही रावण फिर जब दिग्विजय किया तो उसी समय उन्होंने फिर स्वर्ग में जब गए थे उसी समय स्वर्ग में ये बड़ा कपिल बराह को भी उन्होंने दर्शन किए थे। जब दर्शन किए राक्षस शरीर था लेकिन भी भगवान का सामने उनका सिर झुक गया। तो उन्होंने सोचा कि इसको क्यों नहीं मुँह लेके जाऊं लंका को। तो लंका ले जाने के लिए जब उद्योते है जाके फिर विग्रह को उठाए तो टस से मस नहीं हुआ। तो रावण ने बोला कि अरे मैं कैलाश पर्वत को तो बहुत आसानी से उठा दिया था, इसको मैं क्यों नहीं उठा पा रहा हूँ। तो भगवान बोले कि तुम तो अवैष्णव हो, तुम राक्षस हो, तुम कैसे उठा सकते हो। तो फिर चतुर रावण क्या किया, भगवान को बहुत स्तुति स्तव किया तो उन्होंने फिर हल्का हो गए। जब हल्का हो गए तो क्या हुआ ना, और उनको फिर अपना पुष्पक विमान उठा के फिर लंका लेके गए। तो लंका में लेके पे उन्होंने आराधना भी करते रहे। लेकिन ये इसे एक समय आया कि रावण ने सीता माता को जब चोरी कर लिए तो भगवान फिर लंका पर धावा डाल दिए एवं उसका समस्त राक्षस को नाश करके ये रावण को भी विनाश कर दिए, उधार कर दिए उनका भी। तो उधार करने के बाद विभीषण को वहां राजा कर दिए। तो भगवान तो अंतर्जामी है, भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं। तो भगवान उनको राज गादी में बैठाने के बाद उन्होंने क्या किए ना, विभीषण को बोले कि मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं और तुमको राजपाट तो संभालना है और मेरे को एक कपिल वराह को आप दे दिया। तो उन्होंने क्या किए ना, कपिल वराह को उन्होंने दे दिए और भगवान लेके आए और अयोध्या में उसको सेवा आराधना किए। तो कुछ काल का बाद फिर अरे मथुरा में शत्रुघ्न को जब राजा कर दिए, जैसे आप सुने रामायण में कि लवणासुर यहाँ बहुत उत्पत मचा के रखा था और उनका हाथ में एक त्रिशूल रोहा करता था, क्योंकि शंकर भगवान उनको दिए थे और उनको वरदान दिए थे कि तुम्हारे हाथ में जब तक अस्त्र रहेगा तो कहीं मार नहीं सकता। तो चौवन मुनि का निर्देशन से जब शत्रुघ्न ने यहाँ आए उन्होंने सब बता दिए थे कि कैसे कैसे घटना होने वाला है और उनका तपस्या का समय में शिकार करने के जब जाएगा तब उसका आक्रमण किया जाए। तो रास्ता में जब वो आ रहा आने का समय चैवन मुनि ने शत्रुघ्न जी को सब बता दिए थे एवं उसी नियम अनुसार उन्होंने जब आए उसी दिन लवणासुर ने और शिकार खेलने के जब गए थे उसी दिन अपना अस्त्र भूल के चल दिए थे, क्योंकि वो भी बहुत बलवान थे। तो उसी समय रास्ता में उसको आक्रमण किया गया और लवणासुर को वध कर दिए। क्यों ना शत्रुघ्न जी ने, जब शत्रुघ्न जी ने आर उनको वध कर दिए तो वहाँ मथुरा मंडल में उनको राजा भी कर दिया गया था। जैसे दीर्घपुर है जो आजकल दिग बला जाता है वहां पर भरत महाराज को राजा किया दिए थे। तो यहाँ पर भी ऐसे शत्रुघ्न जब राजा हुए तो यहाँ पर 600 ब्राह्मण को उन्हें बस स्थापन कराए थे और यहाँ जब लौट गए अयोध्या वहां पर जब रामचंद्र भगवान उसका ऊपर बहुत ही प्रसन्न हुए। तो बहुत प्रसन्न होने के बाद तो भगवान उनको कुछ देने चाहे तो उन्होंने बोले कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, हम कपिल वराह को दे दिए। तो कपिल वराह को लेके आए और मथुरा में स्थापना करके उन्होंने बहुत लंबे समय तक और उनको आराधना किए और अभी भी वो जगह अदृश्य हिसाब में है। कोई अच्छा पुराना भक्त हो तो वो देख सकता है। दीनबंधुपुर वो कैसा था, हम जब यात्रा किए थे उस समय उन्होंने दर्शन किए थे। तो उनका गाड़ी से आप जाएंगे तो अवश्य कपिल वराह का आप दर्शन कर सकते मथुरा में। तो ऐसे वराह भगवान का लीला और बहुत ही सुंदर है। और आप वराह भगवान जैसे भगवान को ब्रह्मा जी ने भी एक जगह में स्थापन किए थे जो कि चैतन्य चरितामृत वर्णन आता है कि पुरी जाने का समय आप जो जाजपुर बोल के एक जगह है वो जजाति महाराज ने बहुत लंबे समय यज्ञ किए थे इसलिए उसका नाम जाजपुर है। ब्रह्मा कोई कल्प में फिर सूर्य को सर्जना करने के लिए वहां सेत बरहा का भी उन्होंने स्थापन किए हैं, तो वहां भी आप दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये बड़ा भगवान वा बड़ा दादी द्वादशी का आज सुबह आविर्भाव तिथि में आप लोगों को संक्षेप में सुनाया। तो आगामी काल है नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव तिथि है, तो हम तो पुजारी है, इधर कथा सुनने भी हमको मिलना असंभव है, फिर भी आपको नित्यानंद प्रभु के बारे में थोड़ा 5-10 मिनट बता देता हूं। तो नित्यानंद प्रभु अभिन्न अरे बलराम है, ब्रजेंद्र नंदन जयी सचिसुत हैल सही बलराम हैल निताय। तो पश्चिम बंगाल में एक बीरभूम नामक डिस्ट्रिक्ट में बा जिला में एक चक्रा नामक एक ग्राम है, जहां पर हड़ाई पंडित और पद्मावती नामक एक दंपति बास करते थे। तो जब माघ महीने का त्रयोदशी तिथि में नित्यानंद प्रभु का भी आविर्भाव हुआ था, और नित्यानंद प्रभु आविर्भाव होने का बाद वहां का जो परिवेश और धन्य धान्य से परिपूर्ण था। तो नित्यानंद प्रभु और जो माधवेंद्रपुरी का मिलन आपका जो कहाँ हुआ था ना, आपका उधर पुनरपुर जो है वहाँ पर शंकरारण नाम से भी एक आर शरीर त्याग किए थे, तो उसी प्रसंग में वहाँ पर लक्ष्मी पति से उन्होंने दीक्षा लिए थे नित्यानंद प्रभु ने, और वहाँ पर उन्होंने माधवेंद्रपुरी से भेंट हुई थी, क्योंकि उनका माधवेंद्रपुरी जब वहाँ आर गए थे हड़ाई पंडित का पास, तो उन्होंने फिर उनको एक शिष्य चाहिए था तीर्थ यात्रा करने के लिए, तो दक्षिण भारत से लेके सभी तीर्थकों ने यात्रा भी किए थे, और यात्रा करने के बाद नित्यानंद प्रभु उनका साथ में थे। और तो नित्यानंद प्रभु वहाँ से आए थे वो वृंदावन, तो यहाँ से उनको पता चला कि नवद्वीप में कोई आ चुके हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उस समय आविर्भाव हो चुका था। तो चैतन्य महाप्रभु वहां जाके फिर नित्यानंद प्रभु का पता लगाने लगे, तो सभी को बतलाया कि नित्यानंद प्रभु है कहाँ। तो उस समय नित्यानंद प्रभु नंदन आचार्य जी का घर में ठहरे हुए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने सपन में देखे थे, क्योंकि जब अभिन्न बलराम है तो उसका तालध्वज रथ था, एवं तालध्वज रथ का दर्शन किए थे, उनका जो स्वरूप था ग्वाल रूप में उसको भी दर्शन किए थे। तो सुबह सुबह चैतन्य महाप्रभु दूसरा भक्तों का लोग लेके जब नंदन आचार्य का घर में गए, तो वहां नित्यानंद प्रभु का साथ मिलन हुआ था। तो नित्यानंद प्रभु इतना दयालु हुआ कि जैसे हिरण्यकश्यप रावण कुंभकर्ण जैसे नहीं, जगाए मधाई के जैसे और पापी को उद्धार किए, तार साखी जगाए मधाई, क्योंकि जगाए मधाई इतना दुर्बल थे, लेकिन उन लोग पाप करते थे लेकिन अपराध नहीं करते थे। तो एक समय आया कि चैतन्य वहां पर नित्यानंद प्रभु बोले, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वोत्तम महारा आज्ञा करो प्रकाश। तो उन्होंने बोले कि आप हमारे आज्ञा आप जाके पालन करो, उसको प्रचार करो। तो हर दिन आप प्रचार करने का उसका फिर क्या फल हमको बताना। तो इसे हर दिन जाया करते थे, लेकिन एक दिन ऐसे आया कि ये जगह मधाई जहाँ पर पूरा माल पी के टेर रहते थे उसी जगह में आए। कुछ तो मना करते थे, भाई मत जाओ इधर, बहुत बड़े गुंडे पड़े हुए हैं माल पी के, लेकिन नित्यानंद प्रभु उनका उद्धार करना चाहते थे, उनको प्रेम दान करना चाहते थे, इसीलिए फिर वहाँ जब गए तब तो और एक दिन तो फिर नहा दबड़ कर छोड़ दिए, उसी दिन उद्धार नहीं कर पाए उनको। लेकिन दूसरा दिन जब गए तो उन्होंने बोले कि हरी बोलो, बोले हरी बोलो, हरी बोलो। तो माधाई ने फिर आ रहा तो हरा बोला होगा, लेकिन बोलने नहीं चाहते थे, फिर भी वो चोर चोर होकर तो निशा पिए थे, लेकिन वो मटका लेके फिर मार दिए नित्यानंद प्रभु का, आ रहा कपाल में फिर रक्त बहने लगा। तो उस समय नित्यानंद प्रभु बोले फिर भी ठीक है, मैं को मार दिया लेकिन कम से कम भगवान का नाम ले लो। लेकिन उन्होंने फिर नहीं बोल रहे थे, लेकिन उसी समय जो चैतन्य महाप्रभु को खबर मिला तो चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन चक्र को आह्वान कर लिए, एवं चैतन्य महाप्रभु जो आन कर सुदर्शन चक्र पर ऊपर ने ऊपर में घूमने लगा तो नित्यानंद प्रभु ने अभी चैतन्य महाप्रभु को पर पकड़ लिए। क्यों ना आप तो शपथ करके आया कि बात दे गया कि इस अवतार में मैं कोई अस्त्र शस्त्र धारण करूंगा नहीं, अब ये बात को भूल गए। तो चैतन्य महाप्रभु उसको फिर और सुदर्शन चक्र को उन्हें संभल कर दिए और नित्यानंद प्रभु का पैर में जो दो भाई जब गिरने लगे तो उनको फिर माफ कर दिए। तो नित्यानंद प्रभु इसे अरे कोई लीला किए और नित्यानंद प्रभु इतना उतावले रहते थे कि और गंगा में तैरने लगते थे, क्योंकि और गंगा में तैरने के लिए पानी में तैरने के लिए किसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक बड़ा चमत्कार लीला हुआ करता था क्या ना, उसमें मगरमच्छ वगैरह भी तैरते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु देखते हुए नित्यानंद प्रभु आ भक्त लोग को आनंद देने के लिए उसको भी पूछ पकड़ लेते थे। तो नित्यानंद प्रभु इसे कई लीला किए और नित्यानंद प्रभु का जो आविर्भाव तिथि है, ये आविर्भाव तिथि में और काल बहुत सारे भरत भक्त से आप लोग सुनेंगे एवं उसका आप आस्वादन लेंगे। तो मैं आज इस अभी मेरा वाणी की विश्राम देता हूँ, कोई किसी का प्रश्न है तो आप बता सकते हैं। बराधे भगवान की, बराधा दशी की, गौर ब्रह्मानंदे।